मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्यारे श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 13 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं रंजन कुमार लखनऊ से, अभिषेक कुमार नायक गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, सुरेश कुमार गुप्ता डाल्टनगंज झारखंड से, राजेंद्र शाह चंदोलिया भोपाल से, अमित जायसवाल बक्सर बिहार से, चेतन प्रकाश वर्मा अलवर राजस्थान से, अनूप कुमार लाहौरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, विनय कुमार कानपुर उत्तर प्रदेश से, रवि कुमार सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से, संजय कुमार रावत पिपरिया मध्य प्रदेश से, पल्लवी सिंह जबलपुर मध्य प्रदेश से, निर्मा मौर्य अलाहाबाद उत्तर प्रदेश से और राकेश तिवारी भोपाल से। तो रंजन, अभिषेक, सुरेश, राजेंद्र, अमित, चेतन, अनूप, विनय, रवि, संजय, पल्लवी, निर्मा और राकेश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि शुक्रवार को उस तरीके से जिस पैटर्न पर डेली ऑडियो गाइडेंस आता था वह नहीं आ पाया। उसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण थे, दांत में मेरे काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही थी और उस दिन बृहस्पतिवार की शाम को डॉक्टर को थोड़े से हार्ड स्टेप लेने पड़े और स्थिति ये हुई कि मैं मुंह खोलने की भी स्थिति में 2-3 दिनों तक इस बीच नहीं रहा हूं। चूंकि ये सब कुछ अचानक हुआ इसीलिए मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं आप लोगों को इस बात की सूचना पहले दे पाता। निश्चित रूप से शुक्रवार को मैंने आप लोगों को निराश किया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उसकी भरपाई के लिए अभी जो प्री एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित एक ऑडियो आपको प्रोवाइड किया गया था और मुझे यकीन है कि उससे आप लोगों की काफ़ी भरपाई हो गई होगी और उससे आप लोगों को काफ़ी लाभ भी मिला होगा। तो मित्रों, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए मैं अगर आज कुछ आप लोगों से धीरे धीरे स्लो स्पीड में बात करूँगा तो आप उसे स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ अपने लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। इससे पहले दोस्तों कि मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर आऊं, एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा, वो ये कि खासकर जो बीच में 2 दिन तक डेली ऑडियो गाइडेंस में जो AIR न्यूज का रिव्यू नहीं दिया गया था उसको लेकर के मेरे पास काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। दोनों स्थितियों की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ फेवर में है कि ठीक है आप अपने ढंग से निर्णय लीजिए, कुछ उसके अगेंस्ट भी हैं कि नहीं AIR न्यूज डेली आना चाहिए। तो मित्रों, दोनों में ही कहीं न कहीं मेरे प्रति आप सबका विश्वास और सम्मान और प्यार झलकता है, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं एक बात और आप लोगों को यहां कहना चाहूंगा स्पेशली फ्रेंड्स, कि जो AIR न्यूज के बारे में जो मैं आप लोगों को बताता हूं डेफिनेटली वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, लेकिन यहां मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। जो बार बार बीच बीच में मैं डायरेक्ट डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से आप लोगों को याद भी दिलाता रहता हूं। फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि मैं आप सबकी बैसाखी बनूं। अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे कि सर आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के पांव बनना चाहता हूं, पैर बनना चाहता हूं, आप लोगों की ताकत बनना चाहता हूं। तो फ्रेंड, जब भी आप AIR न्यूज को सुनते हैं पूरी न्यूज़ सुनते हैं, इसके बाद आप डेली ऑडियो गाइडेंस सुनते हैं, तो आप उसमें फिर सोचिए कि सर ने ये न्यूज़ ही क्यों ली हैं, बाकी न्यूज़ क्यों रिजेक्ट कर दी हैं, ताकि आपके अंदर वो दृष्टि पैदा हो सके कि आगे चलकर आप खुद अपनी तरफ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर सकें और फालतू की चीज़ों को रिजेक्ट कर सकें। ये केवल AIR न्यूज़ की ही बात नहीं है, बल्कि जब आप अखबार पढ़ेंगे तब भी आपको एक्सेप्ट करने से ज़्यादा तो रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करने का परसेंटेज तो हार्डली 5% होता है, आप देखिए 95% तो आपको रिजेक्ट ही करना होगा। और अगर उस 95% के रिजेक्शन में आप डर करके और केवल 75% रिजेक्ट किया, डरते रहे कि नहीं ये पूछ लिया जाएगा ये पूछ लिया जाएगा, तो मित्रों आपके दिमाग में इतना ज़्यादा सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा कि सच पूछिए कि वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए जो AIR के न्यूज़ का जो रिव्यू होता है, सच पूछिए तो वो आप उसे मैगजीन पर लागू कर सकते हैं, करना ही चाहिए, उसे अखबारों पर लागू कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब आप जनरल स्टडीज़ की किताब पढ़ रहे हैं, जैसे NCERT की किताब पढ़ रहे होंगे या और कोई भी किताब पढ़ रहे हों, उस पर भी लागू कर सकते हैं। देखिए हमारी आंखों में चश्मा एक ही होता है और उस चश्मे से आप हर चीज़ देख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि घड़ा देखने का चश्मा अलग होगा, आदमी को देखने का चश्मा अलग होगा और पेड़ को देखने का चश्मा अलग होगा, वो एक ही होता है। आपको बस उसकी एक दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। और सच पूछिए तो ऑल इंडिया रेडियो की मैं जो डेली न्यूज़ के माध्यम से आपको डिटेल बताता हूँ, सिलेक्शन बताता हूँ, उसका पर्पज़ आपके अंदर वह दृष्टि ही पैदा करनी है। तो इसलिए प्लीज़ आप AIR न्यूज़ को केवल सुने ना, और न केवल ये समझें कि ठीक है हमें उनका थोड़ा सा रिव्यू मिल गया, थोड़ा सा जिस्ट मिल गया। उससे ज़्यादा ज़रूरी आपको अपने अंदर ये क्षमता पैदा करनी है कि ये न्यूज़ क्यों ज़रूरी है, सर ने बाकी न्यूज़ क्यों छोड़ी, अगर छोड़ी तो उसमें से कितना लिया, और जो बता रहे हैं उसमें से वो कितना कितना ले रहे हैं और इसमें से क्या क्या छोड़ रहे हैं, उस न्यूज़ की एंगल क्या है, इन सब पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि अगर कभी बीच में ऐसी नौबत आती है कि मैं AIR न्यूज़ को नहीं दे पा रहा हूँ, रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। जहाँ तक मित्रों मेरे देने का सवाल है, देखिए मैं तो देने की स्थिति में हूँ और न्यूज़ को दे पाना मेरे लिए सच पूछे तो अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि न्यूज़ तो मैं सुनता ही सुनता हूँ, चाहे मुझे डेली ऑडियो करना हो या ना करना हो, न्यूज़ मैं सुनता हूँ, मेरे पास वो अप्रोच है, उसी को बेस बना करके मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सवाल मेरे देने न देने का नहीं है मित्रों, सवाल इस बात का है कि आप कितनी कैपेसिटी इससे अपना बिल्डअप कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आप लोगों की ताकत बन सकूं, सहारा नहीं, राइट। तो फ्रेंड अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। लाइफ मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहूँगा मित्रों। ये एक लेखक हुए हैं डेनियल डेफो, रॉबिन्सन क्रूसो का आपने नाम सुना होगा, रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डेफो के द्वारा रचे गए एक पात्र हैं, करेक्टर हैं, बेसिकली रॉबिन्सन क्रूसो हैं या नहीं थे, नहीं ही थे, तो करेक्टर था और लोगों को इतने खूबसूरत तरीके से डेनियल डेफो ने उनकी रचना की कि लोगों को लगता था कि नहीं रॉबिन्सन क्रूसो जैसा कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा। तो रॉबिन्सन क्रूसो के कहानी के पात्र रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी है, लिखा डेनियल डेफो ने है, इसके जो करेक्टर हैं वो रॉबिन्सन क्रूसो हैं। होता क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो एक बार एक रेतीले द्वीप पर फंस गया, रेतीले द्वीप में यात्रा कर रहा था और वहां फंस गया। अब मैं पढ़ रहा हूं, अब उसे जिंदा रहने के लिए रास्ता ढूंढना था। उसने दो सूचियां बनाई, एक को वह अच्छी कहता था और दूसरी को बुरी। वह अपने साथ घटित होने वाली बातों को एक या दूसरी सूची में लिखने लगा, यानी कि अच्छी में लिख लेता था जो अच्छी लगती थी और जो बुरी लगती थी उसे बुरी सूची में लिखने लगता था। उसने लिखा, अब देखिए कि क्या लिखा, मैं इस सुनसान द्वीप में फंसा हुआ हूं जो कि बुरा है, पर मैं जिंदा हूं जो कि अच्छा है। जहाज पर जितने अन्य व्यक्ति थे वे मर गए पर मैं बच निकला। मैं बिल्कुल अकेला हूं जो कि बुरा है, पर मैं भूखा नहीं मर रहा हूं, यह अच्छा है। उसने आगे लिखा, जानवरों से अपनी रक्षा के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है, यह बहुत बुरा है, पर समुद्र के किनारे यहां कोई जंगली जानवर भी तो नहीं है, जो अच्छा है। अपनी सूची बना लेने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने यह नतीजा निकाला कि कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती कि उसमें इंसान को प्रभु का कृतज्ञ होने का कोई भी कारण न मिले। मित्रों, ये एक छोटा सा अंश था डेनियल डेफो की कहानी का, जो रॉबिन्सन क्रूसो से जुड़ा हुआ था, वो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया। आप देखें, जो हम अक्सर बोलचाल में कहते हैं फ्रेंड्स, कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे बहुत प्रचलित एक उदाहरण है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ग्लास आधा खाली है। सच दोनों हैं, अगर वो आधा भरा हुआ है तो आधा खाली भी है। सवाल यह है कि आपकी अप्रोच क्या है चीजों के प्रति। जिंदगी में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी, कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसके दोनों पहलू नहीं होंगे। हम चूंकि कोई भी घटना घटती है या किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो हमारा जो नजरिया होता है वो ज्यादातर एक इमोशनल नजरिया होता है, और जब इमोशनल नजरिया होता है तो स्वाभाविक तौर पर उस चीज के जो बुरा पक्ष है, जो निगेटिव पक्ष है, क्योंकि उसी पक्ष से आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आप देखिए कि छोटी सी बुरी घटना घट जाएगी, आदमी कितना विचलित हो जाता है, जबकि अगर अच्छी घटना घट रही है तो उसको एज ए टेक, एज ए ग्रांटेड लेता है, थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाएगी और इसके बाद गायब हो जाएगी, खुशी भी गायब हो जाएगी, आदमी किसी दूसरे काम में खो जाएगा। लेकिन जो बुरी घटना है, आप देखिए कि वो कितने दिनों तक याद रहती है, कम से कम कुछ दिनों तक तो वो बिल्कुल हमारे दिमाग, हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच, व्यवहार, सभी चीजों को बुरी तरह से जकड़ लेती है। उसका कारण यह है कि हम जो घटना घटी है उसे तार्किक रूप में नहीं देख पाते, उसके प्रति जो हमारा नजरिया होता है वो इमोशनल होता है, और इमोशनल नजरिया होने के कारण निगेटिव चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। आप देखिए कि एक ही स्थिति है कि यहां मैं अकेला हूं, यह बहुत बुरी बात है, लेकिन जिंदा तो हूं, यह बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं, जबकि दोनों एक ही चीज है, स्थितियां एक ही चीज है, लेकिन उसके मूल्यांकन का आधार देखिए। इस कहानी की खूबसूरती यह मूल्यांकन ही है कि मेरे पास अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार नहीं है, यह बहुत बुरी बात है, लेकिन इस द्वीप पर कोई जानवर भी तो नहीं है, यह अच्छी बात है। यानी कि एक ही समय में, एक ही सिचुएशन में दोनों चीजें मौजूद रहती हैं। सवाल यह है कि हमारा फोकस किस पर है, और जिस पर हमारा फोकस होता है मित्रों, वही हमारा जीवन होता है। तो इस तरीके से मुझे ये अंश बहुत खूबसूरत लगा था जब मैं पढ़ रहा था, तो फिर मैंने महसूस किया कि नहीं, ये अंश मुझे अपने स्टूडेंट्स को, यंग स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, ताकि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितनी भी निगेटिव चीजें हों, मान करके चलें कि अभी भी बादलों के पीछे सूरज जीवित है, सूरज खत्म नहीं हुआ है। फर्क इतना ही है कि अभी बादलों ने ढक लिया है, वह निकल नहीं पा रहा है। अच्छे दिन भी आएंगे ही, बशर्ते कि हम अपने को संभाल कर रखें। आदमी इतना सर्वशक्तिमान होता है कि बुरी से बुरी स्थितियां भी आदमी को तोड़ नहीं सकती। और यही दोस्तों, सच पूछिए द ओल्ड मैन एंड द सी का संदेश भी है, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, एक बूढ़ा मछुआरा। तो मित्रों, अब इस लाइफ मैनेजमेंट के बाद अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। दोस्तों, शायद मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि किसी भी देश के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे। नो डाउट कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जिन्हें पिछले साल के, अगर आप देखेंगे, एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो प्री में था उसमें CEO का नाम भी दिया हुआ है। आजकल क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में ये शब्द ज्यादा चल गया है, तो हमारे प्रधानमंत्री को अब लोग CEO ऑफ द नेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हेड ऑफ द कंट्री, मतलब हेड ऑफ द कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहना चाहिए, जब कुछ भी कह रहे हों तो हमें चाहिए कि हम उसे बहुत ध्यान से सुने। आपकी सहमति असहमति अलग बात है, आपकी पसंद नापसंद अलग बात है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कंट्री को एड्रेस कर रहे हैं और कंट्री का सबसे प्रमुख व्यक्ति कह रहा है, जिसको नीतियां बनानी हैं, जिसको निर्णय लेने हैं, जिसको पूरे देश के प्रशासन का संचालन करना है, वो व्यक्ति कह रहा है। तो उस व्यक्ति को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, चूंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट होने के नाते तो आपको और भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बार आम आदमी कर दे कोई बात नहीं, आम आदमी तो करता ही है, उसको क्या लेना देना है, वो तो अपने काम में बिजी है, रोजी रोटी में। लेकिन आप तो तैयारी में बिजी हैं, तो आपको जो रास्ता मिलेगा कि आपको कहाँ तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस एंगल से तैयारी करनी है, किन किन चीजों पर ध्यान देना है, तो ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, जो हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड है, उनकी बातों से मिलेगी। हालांकि मुझे यहाँ सिर्फ सिर्फ नहीं कहना चाहिए, मैं इस शब्द को वापस लेता हूं, लेकिन उनसे भी मिलेगी, दूसरी जगहों से भी मिलेगी, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा मिलेगी। कल आपने प्रधानमंत्री जी का मन की बात हो सकता है कि सुना हो, या परसों उसमें आया था, रात में उसका प्रसारण हुआ था, और कल की न्यूज आपने सुनी ही। अब आप देखिए कि जब हम न्यूज सुनते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने किन किन बातों पर ऐसा जोर दिया है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के दौरान हमें उन टॉपिक्स के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाना चाहिए, थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना में 3 महिलाएं शामिल हुई हैं, जिसको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, इसका उन्होंने उल्लेख किया। आप जानते हैं कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, वीमेन एम्पावरमेंट है, ये आपके सिलेबस में है, आप उठा करके देख लीजिए, मेंस में आपके सिलेबस में शामिल है। अब ये 3 वायु सेना के फाइटर विमान में वो शामिल हो रही हैं, पायलट के रूप में शामिल हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यानी जब प्राइम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं तो कंट्री इस बात को कह रही है, हमें यह मानकर चलना चाहिए, देश इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है। प्रधानमंत्री अगर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो पूरा देश उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि अब ये घटना सबको मालूम हो गई, हालांकि अखबारों में इससे पहले ये बात आ चुकी है, लेकिन उनके कहने के बाद तो उसका वजन और ज्यादा बढ़ गया है। तो कंटेंट के रूप में आपको ये मालूम होना चाहिए। तो जब भी कहीं महिलाओं से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो कोशिश कीजिए कि आप कैसे इस बात को उसमें अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं, बजाय छोटी मोटी चीजों को शामिल करने के, है ना, ये लेटेस्ट भी है। दूसरी चीज आपने देखी है दोस्तों कि काला धन के बारे में, शुरुआत तो न्यूज की इसी बात पर हुई थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक मौका है कि 30 सितंबर तक उनके पास जो भी ब्लैक मनी है वो उसे डिक्लेयर कर दें, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और आज अखबारों में भी इस बात को लेकर के काफी कुछ लिखा भी गया है। ये योजना पहले वित्त मंत्रालय ने घोषित की थी, आपको मालूम है कि जो भी जिस व्यक्ति के पास भी ब्लैक मनी है वो उसकी घोषणा कर दे, उसका एक निश्चित परसेंटेज वो सरकार को टैक्स के रूप में दे दे, और फिर उसका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो व्हाइट मनी हो जाएगा, और इसके बदले में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसके लिए उसको कोई सजा भी नहीं मिलेगी। मित्रों, इस तरह की योजनाएं इससे पहले भी आती रही हैं, और आप जानते हैं कि अभी की जो सरकार है वो काले धन को लेकर के ज्यादा संवेदनशील है कि इसे किसी न किसी तरीके से नियंत्रित किया ही जाना चाहिए। और सच बात यह है फ्रेंड्स कि अगर ब्लैक मनी को कंट्रोल नहीं किया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर से सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर ही पड़ता जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो समानांतर अर्थव्यवस्था है, वो फिर सरकार की नीतियों को बहुत, उसके प्रभाव को बहुत कम कर देती है। अब इसके प्रभाव को कैसे कम करती है, ये एक होमवर्क है जो मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए कि काला धन किस तरीके से सरकार की नीतियों को एक तरह से मिनिमाइज कर देती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है। इस पर आप ही लोग थोड़ा सा सोचिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपने देखा मित्रों कि प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण की बात कही है, जल संचयन कहना चाहिए संरक्षण की बजाय, जल संचयन की बात कही है। गांव का पानी गांव में, शहरों का पानी शहरों में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी का संकट न केवल हमारे ही देश में बढ़ता चला जा रहा है बल्कि दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, और यह भी कहा जाने लगा है कि शायद अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो। स्वाभाविक है कि ऐसे में जो भी देश के निर्माता हैं, नीति निर्माता हैं, वो इसको लेकर के चिंतित होंगे। और ये बहुत ही सामान्य सी बात है, जैसे दो चीजें आप लीजिए दोस्तों, बहुत ही सामान्य सी चीज है, पानी का संचयन और स्वच्छता। सच पूछे तो ये दोनों चीजें जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। स्वच्छता तो देखिए सबसे ज्यादा जन भागीदारी की मांग करती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वच्छता की बात है, क्योंकि स्वच्छता आप गंदा मत कीजिए, चीजें स्वच्छ ही रहेंगी। जहां तक पानी संचयन की बात है तो बट नेचुरल है कि उसके लिए आपको छोटे छोटे डैम बनाने पड़ेंगे या तालाब बनाने पड़ेंगे, तो उसमें या तो सामूहिक श्रम चाहिए या फिर सरकार की आर्थिक मदद चाहिए ताकि उनको अंजाम दिया जा सके। और आप देख रहे हैं कि कुछ राज्यों ने तो पानी संचयन के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आप एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो वहां के जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं अजीत जोगी जी, उन्होंने पानी संरक्षण की बहुत कोशिश की, तो बहुत छोटे 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 तालाब उन्होंने बनवाए। और सच पूछे तो छत्तीसगढ़ ना तालाबों के लिए जाना भी जाता है, आप छत्तीसगढ़ में जब ट्रैवल करेंगे तो देखेंगे वहां लाइन से आपको तालाब मिलेंगे। तो मित्रों, एक पानी संचयन की प्रधानमंत्री जी ने बात कही, और इसके बाद इसरो का भी उन्होंने स्पेशली उल्लेख किया, जिन्होंने अभी एक साथ 20 उपग्रह छोड़कर के एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और आप लोगों को ध्यान होगा कि इस पर मैंने आप लोगों को कुछ प्रेस क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी, स्पेशली एडिटोरियल कमेंट, क्योंकि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत की उपलब्धि दो मायने में और भी है। पहला तो यह है दोस्तों कि इसके माध्यम से हम विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते हैं। आपको आपने ध्यान दिया होगा एडिटोरियल कमेंट में यह था कि अमेरिका के भी उपग्रह भारत ने छोड़े हैं। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो ये होगी कि अगर इस मतलब ये बहुत ही क्षमताशील और आगे भी इसको बढ़ाया गया और बढ़ाया ही जाएगा, तो क्योंकि अमेरिका से अगर आप अपना उपग्रह छुड़वाते हैं तो उसके 1/10 खर्च में भारत छोड़ देगा उसको, क्योंकि यहां हमारी लागत बहुत कम आती है। तो स्वाभाविक है कि ये भी एक ऐसा बाजार है जहां भारत विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये भी है मित्रों कि आपने नरेंद्र मोदी जी के अगर आप कार्यकाल को देखेंगे तो शुरुआत के 6 महीने में उन्होंने एक तरह से उपग्रह डिप्लोमेसी की भी शुरुआत की थी। उन्होंने सार्क देशों से और एशियन कंट्रीज से कहा था कि हम आपके उपग्रह छोड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। तो एक तरीके से जो छोटे देश हैं उनके उपग्रह छोड़ करके हम उनके साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा घनिष्ठ और मजबूत भी बना सकते हैं। तो मित्रों, ये 4 पॉइंट्स थे जो मन की बात में उन्होंने कही। देखिए, कही उन्होंने और बातें भी हैं, लेकिन आप उनमें से किनको पकड़ेंगे? ऐसे नहीं कि चार ही बात उन्होंने कही, लेकिन आपको अब यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि चूंकि AIR न्यूज में ये 4 बातें ही ली गई हैं, तो मतलब देश सबसे ज्यादा जो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है वह इन 4 बातों के प्रति करना चाह रहा है। तो इसीलिए हमें इन 4 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। और वैसे भी आप देखिए कि इसमें से कोई चीज बहुत नई नहीं है कि आपको पहली बार पढ़ना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना, इन टॉपिक्स पर को अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली सूची में शामिल कर लेना है। मित्रों, जो दूसरी जो खबर थी वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो NSG है, आपने देखा कि उसमें सियोल में जो बैठक हुई थी उसमें भारत मेंबर नहीं बन सका है और चीन उसमें एग्री नहीं किया, दूसरे देश भी थे, ब्राजील वगैरह भी थे, दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने भी वो भी एग्री नहीं कर पाए। उसमें न्यूज में आपने एक शब्द सुना कि इसमें प्रक्रियात्मक बाधाएं थी। चाइना ने भी यही कहा है कि इसमें हम भारत के विरोध में नहीं है कि भारत इसका मेंबर ना बने, हम तो इसकी प्रक्रिया जो है, इसका जो नियम है, नियम यह है कि जो भी देश इसका मेंबर बनेगा उसे परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी और मैंने बताया था कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था। तो अगर भारत, चीन का यह कहना था या और भी दूसरे राष्ट्र कि अगर भारत बनना चाहता है इसका मेंबर तो उसे चाहिए कि वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे, जो वो नहीं कर रहा है। तो ये इसको हम कहेंगे प्रक्रियात्मक बाधाएं। मतलब इसको बहुत से लोग क्या होता है कि जैसे चीन और भारत में एक तरह से प्रतिद्वंदिता है, या हमें लगता है कि चीन भारत का विरोध ही करता है और वो उधर वो पाकिस्तान को चूंकि सपोर्ट कर रहा है और भारत और अमेरिका धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं और अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है, तो ऐसी स्थिति में चीन स्वाभाविक तौर पर हमारा विरोध करेगा ही करेगा। इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं और अखबारों में भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन ने जो मना करने के लिए जो आधार लिया है, उस आधार को हम सामान्य तौर पर उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। वो जो बात अपनी कह रहा है तो डिप्लोमेटिक या रूल्स रेगुलेशन के तहत वो अपनी सही बात कह रहा है। ये बात अलग है कि दूसरे सारे देश चाह रहे हैं और इतनी बड़ी चीज नहीं है कि प्रक्रिया को इसकी बात इसका बाधक बनाया जाए, लेकिन उसके हाथ में एक हथियार है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मित्रों, आपको इसको समझना होगा प्रक्रियात्मक बाधाएं क्या हैं। और आज मैं आपको एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं, चीन भारत के खिलाफ क्यों है, यह दैनिक जागरण में छपा है। ये अच्छा लेख है, आप इसको पढ़िएगा और मुझे लगता है कि ये लेख आपके पास होना भी चाहिए ताकि भारत और चीन के संबंधों के बारे में आप समय समय पर अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकें। तो ये मैं नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगली जो खबर थी वो मादक पदार्थों को लेकर थी। हमारे इंटरनेशनल डे पर हमारे राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में कुछ कही हैं, बातें कही हैं, लेकिन मैं जो इस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा वो खासकर दो कारणों से कि मैं मादक पदार्थ को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों मान रहा हूँ। पहला तो ये है फ्रेंड्स कि बिहार सरकार जैसे ही अभी बनी, जब नीतीश कुमार जी फिर से सत्ता में आए, तो आपने देखा कि उन्होंने शराबबंदी लागू की। कुछ राज्यों में और भी इसको लेकर के हलचल रही और खासकर बिहार में जो शराबबंदी हुई उसकी काफी चर्चा हुई। फिर दूसरा आप देखते हैं कि उड़ता पंजाब जब फिल्म आई तो पंजाब में जो मादक पदार्थों की जो बिक्री हो रही है और नई जनरेशन जो उसकी चपेट में आ रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया। और आपको ये भी मालूम है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और हथियारों की तस्करी करने वाले भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि ये सोशल इशू भी है, इकोनॉमी इशू तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ इशू है, लेकिन एक सोशल इशू भी है और पंजाब में यह सोशल इशू दिखाई देने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट ठीक ठाक टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, पब्लिक स्पीक का जो सब्जेक्ट बताया गया है वो स्मार्ट सिटी है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको चाहिए कि आप ये प्रोग्राम सुने क्योंकि स्मार्ट सिटी सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज में बस इतनी ही चीजें थी। एक बात जो इस बीच में दो तीन दिन में हुई है दोस्तों, वो ब्रेक्सिट को लेकर के ही है कि ब्रिटेन ने अब यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बारे में जनमत करा करके ये फैसला कर लिया कि वो यूरोपियन यूनियन छोड़ेगा। इस पर मैंने आपको कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो आप उन सबको देखते रहिएगा, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। फिलहाल मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी चूंकि उन अखबारों में काफ़ी आ रहा है तो वहां आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अखबारों की क्लिपिंग्स पर। एक क्लिपिंग्स में आपको एफडीआई पर प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले सप्ताह सरकार ने कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दी है, उसको लेकर के दो मत ऑलरेडी होते हैं। मैंने अपने सैटरडे के क्वेश्चंस में भी कुछ इसी तरह का ही सवाल आप लोगों को दिया है हल करने के लिए। तो एक पक्ष कहता है कि इससे देश की तरक्की होगी, दूसरा कहता है कि नहीं, तरक्की नहीं होगी, और यही खूबसूरती भी इन चीजों की होती है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं आज आपको दो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। एक आर जगन्नाथन जी का है जो ये मानकर चल रहे हैं कि इससे हमारे देश का बहुत विकास होगा, एक पक्ष आपको पढ़ने को मिलेगा। और फिर मैं दूसरा आपको राष्ट्रीय सहारा का एक लेख राजकिशोर जी का प्रोवाइड कर रहा हूं जो ये मान करके चल रहे हैं कि यह सही कदम नहीं है। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको इस बारे में बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि दोनों पक्षों को आप लेकर के चलिए, फिर आप अपना मन बनाइए कि आप किधर हैं, और आपका जो मन बने वो आपकी अपनी च्वाइस के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, बुद्धि के हिसाब से बनना चाहिए, तर्क के हिसाब से वो चीज होनी चाहिए जो आपको ज्यादा तार्किक लगे। तो मित्रों, ये मैं दोनों आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और दूसरे आर्टिकल्स हैं, छोटे छोटे और आर्टिकल्स हैं, वो सब आप देख लेंगे, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब मैं आता हूँ आज के ईमेल पर। मेरे पास ईमेल आए हैं, बहुत से मेल हैं। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसमें मित्रों एक मेल चंदन पासवान का जोधपुर राजस्थान से, दीपक कुमार का दरभंगा बिहार से, और सावन कन्नौजे का जिन्होंने बताया है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। तो चंदन, दीपक और सावन, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। तो मित्रों और कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, वह आलोक कुमार, भजन जांगीर जालौर राजस्थान से, डॉक्टर अमिता सिंह सेफई उत्तर प्रदेश से, रामोतार बंजारा शहडोल मध्य प्रदेश से, अच्छेलाल चौहान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, शिवदयाल कुमार राम जितेंद्र सिंह लखनऊ से, प्रियंका नेहा सिंह, रजनीश शर्मा जम्मू एंड कश्मीर से, सोनू कुर्मी, सोनू कुमार झा पूर्णिया बिहार से, रानी प्रजापति भोपाल से, विजय साहू रांची से, कृष्ण कुमार इलाहाबाद से, अली हुसैन, निशु सिंह, नम्रता सिंह जमशेदपुर झारखंड से, कुसुम सुथार, शर्मिला कुमारी, जीवेंद्र कुमार किशोर झा निर्मली बिहार से, अंकुर चौहान, अविनाश वर्मा चंपारण बिहार से, विवेक मीना जयपुर से, गौरव शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, अर्चना उपाध्याय साधना यादव लखनऊ से, और सत्यम दुबे जौनपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस समाप्त होता है। फिर आप सबसे मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे। नमस्कार।